नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन पर विचार विमर्श के लिए संसद की 3 दिन की विशेष बैठक आज से शुरू होगी। वर्ष 2023 में पारित इस विधेयक को लागू करने के लिए सरकार 3 संशोधन विधेयक पेश करेगी। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
यह विशेष बैठक संविधान में संशोधन करने के लिए बुलाई गई है ताकि परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2029 के लोकसभा चुनावों में महिला आरक्षण अधिनियम को लागू किया जा सके। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा और राज्यसभा के सदन के नेताओं को पत्र लिखकर सभी पार्टियों से इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने का आग्रह किया था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी यह आश्वासन दिया कि महिला आरक्षण विधेयक संतुलित है और यह हर राज्य समुदाय और क्षेत्र की आकांक्षाओं को ध्यान रखता है। भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी आर और कांग्रेस सहित कई राजनीतिक पार्टियों ने दोनों सदनों के अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है, जिसमें उन्हें सदन की कार्यवाही के दौरान मौजूद रहने और अपनी पार्टी के रुख का समर्थन करने का निर्देश दिया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि विपक्षी दल महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में है, लेकिन विधेयक को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है उस पर आशंका है। नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद श्री खड़गे ने दावा किया कि विधेयक राजनीति से प्रेरित है। इस बीच दिल्ली में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में महिलाओं ने रैली निकाली, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा शामिल हुए। महिलाओं ने निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन से लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन तक पदयात्रा की और प्रस्तावित विधेयक के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि जनगणना 2027 के पहले चरण का अभियान आज से कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा। यह अभियान 15 मई तक चलेगा, जिसके दौरान प्रशिक्षित गणनाकर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्र करेंगे। बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में शपथ ली। जनता दल यूनाइटेड के विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री होंगे। अन्य कैबिनेट मंत्रियों की सूची की घोषणा बाद में की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास गृह और सामान्य प्रशासन सहित 29 विभाग रहेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के पास संसदीय कार्य और सूचना तथा जनसंपर्क सहित 10 विभाग रहेंगे। उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त और ऊर्जा समेत 8 विभागों का कार्यभार दिया गया है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के नागरकोइल में रोड शो किया। वहीं डीएमके प्रमुख और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने धर्मपुरी में चुनाव प्रचार किया, जबकि उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन वासुदेव नल्लूर में प्रचार अभियान में शामिल रहे। पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और कड़ी कर दी है, जबकि इसराइल दक्षिणी लेबनान में सैन्य अभियान जारी रखे हुए है। हालांकि इसके साथ ही कूटनीतिक प्रयास भी सावधानीपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार नाकेबंदी के पहले 48 घंटों के दौरान कोई भी जहाज अमरीकी नौसैनिक बलों को पार नहीं कर सका। कम से कम 9 जहाजों ने निर्देशों का पालन करते हुए वापस ईरानी जल क्षेत्र की ओर लौटने का निर्णय लिया। संयुक्त राज्य अमरीका ने रूसी या ईरानी तेल की खरीद पर किसी भी तरह की आगे की छूट देने से इनकार कर दिया है। व्हाइट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन में अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि मौजूदा छूट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने की 5 तारीख को अमरीका ने 30 दिनों के लिए प्रतिबंधों में छूट दी थी, जिससे भारत को यूक्रेन युद्ध से जुड़ी पाबंदियों के बावजूद रूसी तेल खरीदने की अनुमति मिली थी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। बेंगलुरु के जोश हेजलवुड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अगला मुकाबला आज मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।